Siddhebhyo Om Namah Siddhebhyo Om Namah Siddhebhyo Om Shuddhatmane Namah Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vachayanam Namo Lohe Savasahunam Sayalo Vasaganivaha Samvarane Vajasafittanti Pasasatasanamyum Pasanu Yoam Paruvemo यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है। जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये 13वीं पुस्तक जो पंचम खंड अपना शुरू है वर्गणा नाम का, उसमें स्पर्श अनुयोग द्वार की चर्चा चल रही है। 13 प्रकार के निक्षेप बताए थे स्पर्श पर, उसमें से अपनी बात चल रही है। हाँ देखो, ये सारे भंग वगैरह हमने देखे थे, तो एक एक क्षेत्र अनंत, पहले तो हमने यहां से देखते, देखो द्रव्य स्पर्श के पहले भी नाम स्पर्श, स्थापना स्पर्श, फिर द्रव्य स्पर्श, उसके बाद द्रव्य एक क्षेत्र स्पर्श, अनंतर क्षेत्र स्पर्श, त्वक वो हो गया, हाँ देश स्पर्श, फिर त्वक स्पर्श, त्वक यानी त्वचा, सर्व स्पर्श का भी चल रहा है। तो वहां सूत्र पढ़ा था हमने कि जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सर्वात्मना संपूर्ण रीति से स्पर्श करता है, जैसे परमाणु द्रव्य दूसरे परमाणु द्रव्य को एक प्रदेश में जब रहते हैं तब, उसकी बात चली थी, उसको सर्व स्पर्श कहते हैं। ये बहुत लंबी चौड़ी उसने उस पर चर्चा की थी शंकाकार ने, अभी हम समाधान पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। पेज नंबर 23, पृष्ठ संख्या 23, समाधान। यहां उक्त शंका का परिहार करते हैं, कल हमने शंका पढ़ी थी, यथा परमाणु क्या सावयव होता है या निरवयव, सावयव यानी अवयव वाला है कि बिना अवयव वाला है। सावयव तो हो नहीं सकता क्योंकि परमाणु शब्द के वाच्य रूप उससे अवयव पृथक नहीं पाए जाते। जब हम परमाणु कहते हैं तो उसका कोई परमाणु का अन्य अवयव उससे भिन्न हो ऐसी बात नहीं है। यदि उसे पृथक अवयव माने जाते हैं तो वह परमाणु नहीं ठहरता, क्योंकि परमाणु उसी को कहते हैं जिसके और भेद नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भेद होने चाहिए उनके अंत को वह अभी नहीं प्राप्त हुआ है। नहीं मानेंगे तो की बात है, यदि अवयवों को मानेंगे तो अभी उसका अंतिम भेद नहीं आया, ऐसा कहना पड़ेगा। यदि कहा जाए कि अवयवी को जिसके अवयव है उसको अवयवी कहते हैं, कोई कहेगा कि अवयवी को ही हम अवयव मान लेंगे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो बहुव्रीही समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है, कारण कि उसके बिना वह बन नहीं सकता, यानी अवयवी को ही अवयव नहीं कह सकते। कल कहा था वो नीलकंठ वाली बात कि जिसका कंठ नीला है ऐसा वह अन्य पदार्थ से अन्य पदार्थ का वह वर्णन किया है, परंतु यहां अवयव के अवयवी को ही अवयव कहना ये बात नहीं होती, वो बहुव्रीहि समास यहां सिद्ध नहीं होता। दूसरी बात, संबंध के बिना संबंध को कारणभूत नी प्रत्यय भी नहीं बन सकता, ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रत्यय होंगे। ऊपर तो प्राकृत में इम पच्चयाणुवती तो वहाँ इम प्रत्यय नहीं लगता ऐसा कहा है, यानी संबंध सूचक जो कोई प्रत्यय होगा वो नहीं बन सकता। यदि कहा जाए कि परमाणु के ऊर्ध्व भाग अधो भाग और मध्य भाग रूप से अवयव बन जाएंगे सो भी बात नहीं है, क्योंकि इन भागों के अतिरिक्त अवयवी संज्ञा वाले परमाणु का अभाव है। यानी परमाणु को ही हम जो कल हमने देखे थे षटकोण बताते हैं या छह बाजू बताते हैं, वो तो बाहर से उसकी ओर देखने पर हम कह सकते हैं, परंतु उससे भिन्न परमाणु नहीं है, परमाणु के ही वो छह दिशाएं बताई जाती है, परंतु वो उससे भिन्न नहीं है, ये बात बताना चाहते हैं। जैसे अवयव कथनचित भिन्न होते हैं ना, वैसे ये उससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार इस नए के अवलंबन करने पर, पहले तो परमाणु को अवयव वाला भी बताया था, अब इस नए के अवलंबन द्वारा परमाणु निरवयव है यह बात सिद्ध होती है। जब एक देश स्पर्श में हमने कहा था कि परमाणु की एक साइड वो दूसरे परमाणु के दूसरे साइड में स्पर्श करती है तो उसको एक देश कहा था, और तब उसको परमाणु को अवयव है ऐसा सिद्ध किया था। अब यहाँ इस नए के द्वारा उसको निरवयव है ऐसा कहते हैं। संयुक्त पुद्गल स्कंध और असंयुक्त परमाणु प्रमाण उपलब्ध होने वाले पुद्गल स्कंधों का अभाव न प्राप्त हो, इसलिए अवयव रहित परमाणुओं का देश स्पर्श ही यहाँ द्रव्यार्थिक नय के बल से सर्वस्पर्श है ऐसा कहा है। क्या कहते हैं, जहाँ एक देश स्पर्श में या देश स्पर्श में हमने देखा था उसी स्पर्श को यहाँ सर्वस्पर्श इस नय के अवलंबन से, जिसको वहाँ एक देश स्पर्श कहा था या देश स्पर्श कहा था उसी को यहाँ सर्वस्पर्श कह रहे हैं, क्योंकि अखंड परमाणुओं के अवयव नहीं होने के कारण उनका सर्वस्पर्श ही संभव दिखाई देता है। या दूसरी पद्धति भी बताएं, अथवा दो परमाणुओं का देश स्पर्श होता है अन्यथा स्थूल स्कंदों की उत्पत्ति नहीं बन सकती, उनका सर्वस्पर्श भी होता है क्योंकि एक परमाणु का दूसरे परमाणु में सर्वात्मना प्रवेश होने में कोई विरोध नहीं आता। देखो, जब दो परमाणु दो प्रदेशों पर स्थित है और वो उनका संबंध होता है तो हम कहेंगे वो देश स्पर्श है। एक ही प्रदेश में दोनों परमाणु का बंध होता है, एक प्रदेश वाला परमाणु तो दो है, तो क्या कहेंगे हम, वो सर्वात्मना स्पर्श हुआ, सर्वस्पर्श कहेंगे। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रवेश करने वाले परमाणु को दूसरा परमाणु प्रतिबंध करता है, यानी दूसरा परमाणु उसको प्रतिबंध नहीं कर सकता। पहले तो बताया था वो अवगाहना नहीं देता, परंतु यहाँ तो क्योंकि अवगाहना आकाश का गुण है, परंतु एक ही उसी प्रदेश में दूसरा परमाणु भी रह सकता है, उसको प्रवेश देने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म का दूसरे सूक्ष्म स्कंध के द्वारा या बादर के द्वारा प्रतिबंध करने का कोई कारण नहीं पाया जाता। हमने देखा था ना, जहाँ प्रकाश है, इस रूम में हमने एक नीला बल्ब लगाया है और फिर पीला बल्ब लगाया, तो वो नीला प्रकाश के जो परमाणु है वो पीले को जगह देगी कि नहीं जगह देगी, तो उसी क्षेत्र में दोनों ही रह सकते हैं, और भी 10 बल्ब जलाओ तो भी उसका प्रकाश उसी क्षेत्र में रहेगा। या हम देखते हैं कांच है तो उसमें से भी लाइट रेज पास हो सकती है, यानी उसको भी वो रोक सकता नहीं है। तो सूक्ष्म एक सूक्ष्म परमाणु दूसरे सूक्ष्म परमाणु को या बादर को नहीं रोक सकता। शंका, सूक्ष्म का अर्थ बारीक है, दूसरे के द्वारा नहीं रोका जाना यह उसका अर्थ नहीं है। इसने सूक्ष्म का अर्थ छोटा किया, बारीक मराठी में कहते शंकाकार ने कहा। शंका है कि सूक्ष्म का अर्थ तो बारीक है यानी छोटा है, तो दूसरे के द्वारा नहीं रोका जाता, इसे अर्थ कहाँ से निकाला? उसका समाधान नहीं, क्योंकि सूक्ष्म का यह अर्थ करने पर, कौन सा, जो छोटा है उसको सूक्ष्म कहेंगे तो महान आकाश आदि सूक्ष्म नहीं ठहरेंगे। ये सूक्ष्म पदार्थ है ना, अमूर्तिक है, वो सूक्ष्म होते हैं, तो उसको सूक्ष्म नहीं कह सकते। जीव का भी गुण है सूक्ष्मत्व, धर्म अधर्म आकाश ये जो है काल है, वो सारे जो अरूपी द्रव्य है, तो वो सूक्ष्म नहीं ठहरेंगे। इसलिए अपने स्वरूप को छोड़े बिना एक परमाणु का दूसरे परमाणु में सर्वात्मना प्रवेश का नाम सर्वस्पर्श कहलाता है। क्या कहते, एक ही दोनों का सर्वात्मना सभी प्रकार से स्पर्श है। कंडीशन क्या है, अपना स्वरूप छोड़े बिना, क्योंकि शंकाकार ने पूछा था कि वो सर्वात्मना प्रवेश हो जाए तो इसका रस उस रूप हो जाएगा, इसका गंध, उसका स्पर्श, वो सब मिटकर वो दूसरे परमाणु रूप हो जाएगा। परंतु एक ही प्रदेश में दो परमाणु पूर्ण रूप से इकट्ठे रहने पर भी, हमने देखा उसका हरेक की सत्ता भिन्न है, हरेक का परिणमन भिन्न है, तो इसे अपने स्वरूप को छोड़े बिना दोनों ही एक ही आकाश के प्रदेश पर रह सकते हैं। हाँ, रह सकता है बादर वाला भी बादर, क्योंकि बादर के भी यथायोग्य भेद है ना, बादर भी हो गए, वो द्विनोख है त्रिनोख है, हमने देखा था बादर में भी, देखो बादर स्कंद भी, अभी औदारिक शरीर के परमाणु बादर है कि नहीं बादर, तो असंख्यात प्रदेशों में परमाणु कितने रहते हैं, अनंत है ना, तो बादर की भी बादर को अवगाहना है, अवगाहना है ना, वो उसी एक ही क्षेत्र में रह सकते हैं। देखो अतः सूत्र में सर्वस्पर्श के लिए परमाणु का दिया गया दृष्टांत वैधर्म्य नहीं है, यानी वो फालतू नहीं है या वो झूठा नहीं है या गलत नहीं है, विरुद्ध धर्म वाला नहीं है। विशेषार्थ, सर्वस्पर्श में एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ पूरा स्पर्श लिया गया है और इसके उदाहरण स्वरूप परमाणु द्रव्य उपस्थित किया गया, परमाणु को तो उदाहरण के रूप में वहां लिया गया है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ देश और सर्व दोनों प्रकार का स्पर्श देखा जाता है, यानी देश स्पर्श और सर्व स्पर्श। परमाणु निरंश होता है या सांश, यह प्रश्न पुराना है। परमाणु अखंड और एक है, इस नए की अपेक्षा वह निरंश माना जाता है, किंतु प्रत्येक परमाणु में पूर्व पश्चिम आदि भाग देखे जाते हैं, इस नए की अपेक्षा वह सांश माना जाता है। दोनों नयों से दो कथन होते हैं। इसलिए जब एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ एक क्षेत्रा प्रदेशावगाही, क्षेत्रावगाही भी नहीं कहा, एक प्रदेशावगाही, एक ही प्रदेश में दोनों का स्पर्श है, तब वह सर्वस्पर्श कहलाता है। जब दो प्रदेशावगाही स्पर्श होता है तब वह एक, वह देश स्पर्श कहलाता है। ये ख्याल में है ना, एक ही प्रदेश में दो सुपर इम्पोज है तो हम कहेंगे वो सर्वस्पर्श है, और दो बाजू बाजू के प्रदेशों में रहकर उनका स्पर्श है एक दूसरे को तो हम कहेंगे वो देश स्पर्श है, नहीं, किसी के पूर्व की ओर किसी के पश्चिम की बाजू उसके चिपक गई, स्पर्श हुआ उसका। इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। एक ही प्रदेश में हो सकता है ना, परमाणु एक प्रदेश ही है, एक एक आकाश के प्रदेश में नहीं है। हाँ, वो दो प्रदेश भिन्न है उसके। हाँ, उसके एक साइड को उसकी दूसरी साइड ऐसे लगी हुई है इस तरह। जो सो फास फासो नामा। अब स्पर्श स्पर्श का अधिकार है। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, सो अठवी हो कखड़ फासो मऊ व फासो। ये मराठी में मऊ शब्द कहते हैं, मऊ शब्द मराठी में कितने प्राकृत के मराठी के शब्द समान है, बारीक बारीक तो हिंदी वालों ने लिखा है। कखड़ फासो मऊ व फासो गरु व फासो लहु व फासो निद्ध फासो रुख फासो सीद फासो उन्न फासो सो सवो फास फासो नामा। वह आठ प्रकार का है, ये स्पर्श स्पर्श जो है आठ प्रकार का। कर्कश स्पर्श मृदु स्पर्श गुरु स्पर्श लघु स्पर्श स्निग्ध स्पर्श रुक्ष स्पर्श शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श, वह सब स्पर्श स्पर्श है। जो स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है। अभी इस नए से इस निक्षेप की जो बात है, स्पर्श किसको कहना कि जो स्पर्श किया जाता है वो स्पर्श है, यथा कर्कश आदि, और जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है वह स्पर्श है, यथा त्वचा इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय। एक तो जो स्पर्श करने वाला है जिसके द्वारा स्पर्श किया जाता है, और दूसरा जिसका स्पर्श होता है। ये मैंने हाथ में रबर लिया है ना, तो जिसका स्पर्श हुआ ये चीज है, और जिसके द्वारा स्पर्श हुआ ये त्वचा इंद्रिय। दोनों स्पर्शों का स्पर्श 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 कहलाता है, दोनों को ही स्पर्श कहा, इसको चीज नहीं कहा। जिसका स्पर्श होता है उसको भी स्पर्श कहा, जिसके द्वारा स्पर्श होता है उसको भी स्पर्श कहा, तो ये दोनों स्पर्शों का स्पर्श हुआ, तो स्पर्श स्पर्श हुआ ऐसा कहते। वह आठ प्रकार का है, कर्कश स्पर्श मृदु स्पर्श गुरु स्पर्श लघु स्पर्श स्निग्ध स्पर्श रुक्ष स्पर्श शीत स्पर्श और उष्ण स्पर्श। इस प्रकार स्पर्श के भेद से स्पर्श स्पर्श भी आठ प्रकार का होता है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। यहाँ कितने ही आचार्य प्रधानता को प्राप्त हुए कर्कश आदि स्पर्शों के एक आदि संयोगों द्वारा स्पर्श भंग उत्पन्न कराते हैं, परंतु वे बनते नहीं, क्योंकि गुण निस्वभाव होते हैं। हमने देखा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण द्रव्य के आश्रय से है, वो स्वभाव द्रव्य का कहलाते हैं। गुणों के आश्रय से अन्य गुण नहीं होते, इसलिए उसको निस्वभाव कहा। इसलिए उनका अन्य गुणों के साथ स्पर्श नहीं बन सकता। प्रधान रूप से द्रव्यत्व को प्राप्त हुए इन गुणों का यदि स्पर्श स्वीकार किया जाता है, तो यदि हम गुणों का ही स्पर्श मान लेंगे तो क्या होगा, रूप रस और गंध आदि का भी स्पर्श होना चाहिए, हर एक गुण का भी स्पर्श बताना पड़ेगा। अगर जैसे हमने द्रव्य को माना है स्पर्श, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ स्पर्श होता है तो हमने उसको स्पर्श कहा। अब एक ही द्रव्य में एक गुण का दूसरे गुण के साथ स्पर्श कहेंगे तो रूप का रस का गंध सभी का स्पर्श होना चाहिए। यहाँ अकेले स्पर्श गुण में ही ये घटित किया है, अन्य गुणों में नहीं, क्योंकि प्रधान रूप से द्रव्यपने की प्राप्ति के प्रति इनमें कोई अंतर नहीं है। प्रधानपने द्रव्यपने की प्राप्ति का अर्थ है, यदि हम गुण को किसी नए से द्रव्य मान भी लेंगे तो की बात है। जैसे स्पर्श को हम द्रव्य मानेंगे तो उसके आठ गुणों के द्वारा जो बनते हैं, तो प्रत्येक गुण को द्रव्य मानो फिर प्रत्येक गुण के साथ स्पर्श बनेगा, तो ये बात घटित नहीं होती। यदि कहा जाए कि ऐसा भी हो जावे, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, यानी हर एक गुण को स्पर्श मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो सूत्र में ऐसा कहा नहीं है, और दूसरी बात, ऐसा मानने पर 13 स्पर्श न रहकर बहुत से स्पर्श प्राप्त हो जाएंगे। 13 स्पर्श हमने तो निक्षेप 13 निक्षेप जो है नाम स्थापना द्रव्य वगैरह वो 13, इसलिए कर्कश कर्कश के साथ स्पर्श करता है इत्यादि भंग यहाँ नहीं कहने चाहिए, क्योंकि उनका द्रव्य स्पर्श और देश स्पर्श में अंतर्भाव हो जाता है, परंतु इसका वहां अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि इसमें विषय विषयी भाव की मुख्यता है। स्पर्श का विषय और विषयी भाव उसकी मुख्यता है। अथवा अभी दूसरी पद्धति से अर्थ करते हैं, सूत्र देशामर्शक होता है, इसलिए निक्षेपों की संख्या का नियम नहीं किया जा सकता। अतएव अपने भीतर जितने विशेष प्राप्त होते हैं, उन सबके साथ 8 स्पर्शों के संयोग से 255 भंग उत्पन्न कराने चाहिए। हमने देखा ना, 8 है तो उसमें एक संयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, ऐसे 255 भंग उत्पन्न हो गए। अथवा कहकर उन्होंने दूसरी अपेक्षा बताई, ये जो 8 नाम अभी हमने देखे थे उसका आपस में स्पर्श, हर एक को एक एक बार रखेंगे तो एक संयोगी कहते हैं, फिर दो दो संयोगी, तीन तीन संयोगी, इस तरह से, इसी का विशेषार्थ कहते हैं। आगम में कर्कश आदि 8 स्पर्श माने गए हैं। इनका स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो स्पर्श होता है उसे स्पर्श स्पर्श कहते हैं। ये डेफिनेशन तो हमने पहले भी देखे थे। यद्यपि स्पर्श स्पर्श शब्द का, स्पर्शों का जो परस्पर में स्पर्श होता है उसे स्पर्श स्पर्श कहते हैं, एक यह अर्थ भी किया जा सकता है, पर इस अर्थ के करने पर सबसे बड़ी आपत्ति यह आती है कि स्पर्श गुणों का अन्य गुणों के साथ होने वाले स्पर्श को भी स्पर्श स्पर्श मानना पड़ेगा। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि गुण निस्वभाव होते हैं, इसलिए उनका परस्पर में स्पर्श नहीं बनता, परंतु गुण को कथंचित द्रव्य मान लेने पर इस आपत्ति का परिहार हो जाता है। इससे यद्यपि गुण का दूसरे गुण के साथ स्पर्श मानने पर जो आपत्ति प्राप्त होती है उसका परिहार हो जाता है, पर ऐसे स्पर्श को अंततः द्रव्य स्पर्श का एक भाग मानना पड़ता है, क्योंकि गुण वो द्रव्य के द्रव्य में ही है, तो वो द्रव्य स्पर्श का ही अंग मानना पड़ेगा। इसलिए स्पर्श स्पर्श शब्द को ध्यान में रखकर यहाँ अन्य गुणों के साथ कर्कश आदि के होने वाले स्पर्श को छोड़कर, अन्य गुणों के साथ नहीं लेना, ये स्पर्श कर्कश आदि जो पर्याय 8 उसका ही आपस में ले लेना, केवल कर्कश आदि 8 स्पर्शों के परस्पर में होने वाले स्पर्श को भी स्पर्श स्पर्श में गिन लिया है। अलग गुणों के साथ स्पर्श को नहीं लिया है, परंतु यह हम हमेशा जो पुद्गल के स्पर्श गुण की 8 पर्याय देखते हैं उनको स्पर्श कहा है, और उन 8 का आपस में जो होगा कॉम्बिनेशन उसको यहाँ ले लिया है। इस प्रकार स्पर्श स्पर्श के 2 अर्थ प्राप्त होते हैं। प्रथम यह कि कर्कश आदि स्पर्शों का स्पर्शन इंद्रिय के साथ जो स्पर्श होता है वह स्पर्श स्पर्श कहलाता है। ये तो पहला अर्थ उन्होंने पहले ही बताया था। और दूसरा, ये जो संयोग होगी कर्कश कर्कश वगैरह जो आपस में, दूसरा यह कि 8 स्पर्शों का परस्पर जो स्पर्श होता है वह भी स्पर्श स्पर्श कहलाता है। इस दूसरे अर्थ के अनुसार स्पर्श स्पर्श के एक संयोगी 8, क्योंकि 8 बातें हैं तो हर एक को एक एक बार गिनेंगे तो 8 हो जाएंगे। द्विसंयोगी 28, द्विसंयोगी कैसे निकाले, ये 8 में से एक कम किया द्विसंयोगी के लिए और उसका एक बार संकलन किया, तो 7 का एक बार संकलन किया, 7 × 8 = 56 और उसका आधा करना, 28 आ गए। त्रिसंयोगी 56, वो यो करना, त्रिसंयोगी कैसे निकालना, अभी 2 माइनस करना, 8 में से 2 गए 6 हुए, 6 का 2 बार संकलन दन, 6 × 7 × 8 डिवाइडेड 1 × 2 × 3 7 × 8 = 56 हो जाएंगे, नीचे 2 × 3 और ऊपर 6 वो निकल जाएंगे एक साथ, ये 56 होते हैं। चतुस्संयोगी, वो चतु बराबर करना, धातु के आगे विसर्ग है, दो बिंदी होती है। चतुस्संयोगी 70, चतुस्संयोगी के लिए अभी तीन माइनस करने, आठ में से तीन गए पांच रहे, और पांच का तीन बार संकलन दें, तीन माइनस किए ना हमने, तीन बार संकलन दें, तो तीन बार के लिए पांच छह सात आठ ऊपर लिखना और नीचे एक दो तीन चार लिखना, तो ये उसको 70 आते हैं। फिर पंच संयोगी 56, पंच संयोगी में चार माइनस करना, चार का चार बार संकलन दन, वो 56 आता है। अब जो हमने देखे थे ना, 8, 28, 56, फिर 70, फिर उसी क्रम से टेपरिंग होगा। षट संयोगी 28, षट संयोगी में पांच माइनस करना, तीन रहे, तो तीन का पांच बार संकलन दन निकालना। सप्त संयोगी 8, हाँ छः माइनस करना, तो दो का छः बार संकलन दें। अष्ट संयोगी 1, आठों का मिलकर एक ही भंग होता है, आठ में से क्या माइनस करेंगे, सात माइनस करेंगे, और एक का कितने ही बार संकलन दन करो तो एक ही रहता है, कुल 255 भंग होते हैं। ये हमने देखे थे ना, दो गुना दो आठ बार करो और उसमें से एक माइनस करो, तो डायरेक्ट हमके ये कितने भंग टोटल हो गए उसका उत्तर आता है, 255 आएगी। जो सो कम्म फासो, अब कर्म स्पर्श का अधिकार है। पुद्गल का जो एक स्कंद है, हाँ हाँ, हर एक गुण का अपना अपना परिणाम स्वतंत्र है। देखो आपका प्रश्न ऐसा है, एक ही स्कंद में समान परिणाम होता है कि अपना अपना अलग होता है? तो हम बाजार से आम लाते हैं, वो एक स्कंद है ना, तो एक बाजू से तो हरा दिख रहा है और एक बाजू अभी पीला हो रहा है, तो हर एक परमाणु का अपना अपना अलग परिणाम चल रहा है वहां पर। अब शरीर के परमाणु है, शरीर रूप से एक स्कंद है, औदारिक का एक स्कंद है, तो ये आंखें काली या ब्राउन है, फिर उसके बाजू में सफेद है, स्किन अलग कलर की है, ये यहाँ फोड़िया है तो उधर दूसरी जगह नहीं है, ये जो है ना एक ही स्कंद में अलग अलग। आप कहेंगे ये शरीर के कारण वो अलग अलग परिणाम होता है क्योंकि वहाँ कोई जीव उसको कराता होगा, तो ऐसी बात नहीं ना। कोई हम कोई भी अन्य भी स्कंद लेते हैं तो उसमें भी वेरिएशंस होते हैं ना अलग अलग, हर एक परमाणु का अपना अपना परिणाम अलग है, क्योंकि दो द्रव्य मिलकर कभी एक परिणाम करे ऐसी बात नहीं है, वो समान परिणाम हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, परंतु हर एक का अपना अपना अलग है। क्योंकि वो सब विशिष्ट गुण के कारण वो एक रूप से बंधे हुए हैं, बंधे हुए फिर भी हर एक की सत्ता भिन्न है, तो हर एक का परिमाण भिन्न होगा ही, भिन्न भिन्न ही है। अभी हम उसमें सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। देखो ये कर्म स्पर्श, उसकी बात अभी आगे के सूत्र में पढ़ेंगे। 108 हो, ये कर्म स्पर्श भी आठ प्रकार का है, नानावर्णीय, दंशनावर्णीय, वेयनीय, मोहनीय, आऊ, णामा, गोद, अंतराय, कम्म फासो, सो सवो कम्म फासो नामा, वह आठ प्रकार का है। ज्ञानावर्णीय कर्मस्पर्श, दर्शनावर्णीय कर्मस्पर्श, वेदनीय कर्मस्पर्श, मोहनीय कर्मस्पर्श, आयु कर्मस्पर्श, नाम कर्मस्पर्श, गोत्र कर्मस्पर्श और अंतराय कर्मस्पर्श, वह सब कर्मस्पर्श है। आठ कर्मों का जीव के साथ, अभी किसके किसके साथ संबंध होता है देखो, आठ कर्मों का जीव के साथ, विसरस सोपचयों के साथ, विसरस सोपचय मालूम है ना, एक एक कर्म परमाणु के साथ अनंत अनंत अन्य परमाणु चिपके हुए उसके रुक्ष स्निग्ध गुण के कारण, उसको कहते हैं विसरस सोपचय, और इस सबका मिलकर एक स्कंद बना है वहां पर, उसमें से कर्म परमाणु के साथ ही जीव का जो कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। विसरस सोपचय तो अपने कारण वहां पड़े हुए हैं, तो एक एक परमाणु के साथ कितने कितने विसरसोपच है, जीव राशि से अनंत गुणे इतने परमाणु है विसरसोपच के। तो आठ कर्मों का किस किस के साथ स्पर्श है, तो जीव के साथ है, विसरसोपचयों के साथ है और नौ कर्मों के साथ है। ये जो शरीर शरीर जो है, वाणी है, मन के परमाणु है, तेजस शरीर है, ये जो सारे परमाणु है वो वहीं उसी प्रदेशों में है, वो कर्म शरीर जो है उसके साथ ये परमाणु भी चिपके हुए हैं ना, तीनों का आपस में बंध है। वह जीव भी है, वह कर्म भी है और वहीं पर नौ कर्म भी है। तो कहते हैं आठ कर्मों का जीव के साथ, विसरसोपचयों के साथ और नौ कर्मों के साथ जो स्पर्श होता है वह द्रव्य स्पर्श में अंतर्भूत होता है। वो कर्मों का आपस में एक दूसरे के साथ भी बंध होगा कि नहीं होगा? ज्ञानावरण के दर्शनावरण के परमाणु चिपके हुए होंगे कि नहीं? अरे एक जीव के प्रदेशों में रहते हैं, उसका भी स्पर्श है कि नहीं है? हाँ, तो चिपके हुए बंध, उसका एक स्कंद बना है ना, कारमान शरीर कहते हैं, तो उसमें आठों ही कर्म एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। एक सबका मिलकर एक स्कंद बना है ना, तो उसका भी बंध कहेंगे। देखो वह द्रव्य स्पर्श में अंतर्भूत होता है, इसलिए वह यहां नहीं कहा गया है। उसकी तो बात यहां नहीं है, यहां किसकी बात उठा रहे? किंतु कर्मों का कर्मों के साथ जो स्पर्श होता है वह कर्म स्पर्श है, ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए। यह तो यहीं का विषय है, यानी ज्ञानावरण का ज्ञानावरण के साथ, ज्ञानावरण का दर्शनावरण के साथ, ये सब यहां गिनेंगे। अब स्पर्श के भंगों का कथन करते हैं। यथा ज्ञानावरणीय, ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। अब ये दो दो संयोग सबके ले लेंगे। ज्ञानावरणीय वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, ज्ञानावरणीय मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, ज्ञानावरणीय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, ज्ञानावरणीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है, ज्ञानावरणीय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है और ज्ञानावरणीय अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के आठ भंग होते हैं। अब दर्शनावरणी के, दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, दर्शनावरणीय ये सबके अलग अलग बताएंगे। अब यहाँ दर्शनावरण और ज्ञानावरण कहा था, वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में आया था, इसको पुनरुक्त कहेंगे। अभी तो हर एक के आठ आठ बताएंगे, आठों के आठ आठ बताएंगे पहले। तीसरा, दर्शनावरणीय वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, दर्शनावरणीय मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, दर्शनावरणीय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, दर्शनावरणीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है, दर्शनावरणीय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है, दर्शनावरणीय अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त आठ भंगों में मिलाने पर 16 भंग होते हैं। ये तो आसान है ना, ये हर एक के ऐसे हम गिनेंगे। अभी वेदनीय, वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, वेदनीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, वेदनीय दर्शनावरण, श के ऊपर रफार देना, वेदनीय दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, वेदनीय मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, वेदनीय आयु द्वारा स्पर्श, श के ऊपर फिर, वेदनीय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, वेदनीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है, वेदनीय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है, वेदनीय अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार वेदनीय कर्म के आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 16 भंगों में मिलाने पर 24 भंग होते हैं। मोहनीय, मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, मोहनीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, मोहनीय दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, मोहनीय वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, मोहनीय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, मोहनीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है, मोहनीय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है, मोहनीय अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार मोहनीय कर्म के आठ भंग, ये भ के ऊपर बिंदी लगाना, आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त भंगों 24 भंगों में मिलाने पर 32 भंग होते हैं। अब आयु, आयु आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, आयु ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, आयु दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, आयु वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, आयु मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, आयु नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है, आयु गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है, आयु अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार आयु कर्म के आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 32 भंगों में मिलाने पर 40 भंग होते हैं। नाम, नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है, नाम ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, नाम दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, नाम वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, नाम मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, नाम आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, नाम गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है, नाम अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार नाम कर्म के आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 40 भंगों में मिलाने पर 48 भंग होते हैं। गोत्र, गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है, गोत्र ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, गोत्र दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, गोत्र वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, गोत्र मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, गोत्र आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, गोत्र नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है, गोत्र अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार गोत्र कर्म के आठ भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 48 भंगों में मिलाने पर 56 भंग होते हैं। अंतराय, अंतराय के द्वारा स्पर्श करना, उसको शीर्ष हुआ है ना, फिर से, अंतराय, अंतराय के द्वारा स्पर्श किया जाता है, अंतराय ज्ञानावरणी द्वारा स्पर्श किया जाता है, अंतराय दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, अंतराय वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, अंतराय मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है, अंतराय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, अंतराय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है, अंतराय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार अंतराय कर्म के आठ भंग होते हैं। उन्हें पूर्वोक्त 56 भंगों में मिलाने पर 64 भंग होते हैं। हर एक के आठ आठ लिए ना, आठ कर्मों के। अब यहाँ एक से लेकर एकोत्तर 7 गच्छ के संकलन प्रमाण पुनरुक्त भंगों के घटा देने पर अपुनरुक्त 36 भंग होते हैं। ये पुनरुक्त भंग जो द्विसंयोगी में हो सकते हैं उसको घटाना है, तो पुनरुक्तों की संख्या कितनी होगी, तो 7 के संकलन धन मात्र होगी, उसको इसमें से घटाया है। देखो हमको दूसरी पद्धति से यहाँ कैसे निकाले, अपुनरुक्त 36, अभी हम अपनी पद्धति से निकालेंगे। एक संयोगी जो है ज्ञानावरण का, ज्ञानावरण के साथ दर्शन, उसको 8 को हम अलग निकाले, वो 8 हो गए, और द्विसंयोगी कितने हो गए, 8 में से एक कम करो तो 7 हो गए। 7 का एक बार संकलन धन कितना होगा, 28 होते हैं, 28 और ओरिजिनल 8, 36 हो जाएगी ना। तो जो हमने नहीं लिए वो भी 7 के संकलन धन इतने ही है, ये बताना चाहते हैं। यहाँ क्या लिखा देखो, एक से लेकर एकोत्तर, एक से लेकर एकोत्तर करते एक प्लस दो प्लस तीन, इस तरह से एक से लेकर एकोत्तर का अर्थ होता है एक एक अधिक। 7 गच्छ के संकलन प्रमाण, एक से अधिक कहाँ तक, 7 तक। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, हाँ इसका संकलन है ना, इसका जोड़ कितना होगा, हाँ 28 होता है, तो 64 में से 28 को घटा दो, क्योंकि यह पुनरुक्त भंग है. अपुनरुक्त 36 भंग होते हैं. अभी इसी का विशेषार्थ बताते हैं. कर्म स्पर्श में न तो कर्मों का जीव के साथ होने वाला स्पर्श लिया गया है, क्योंकि ये सारे द्रव्य स्पर्श में आ गए, और न कर्मों का उनके विसरसोपचयों के साथ होने वाला स्पर्श लिया है, और न कर्मों का नो कर्मों के करना उसको साथ होने वाला स्पर्श लिया गया है. तो क्या लिया है? यहाँ केवल 8 कर्मों का परस्पर में जो स्पर्श होता है उसी का ग्रहण किया गया है कर्म स्पर्श में. कर्म स्पर्श का अर्थ है कर्मों का परस्पर में होने वाला स्पर्श. इस अर्थ के अनुसार कर्म स्पर्श के कुल भंग 64 होते हैं. उसमें से पुनरुक्त 28 भंग घटा देने पर अपुनरुक्त भंग कुल 36 रहते हैं. खुलासा इस प्रकार है. देखो, ज्ञानावरण के जो 8 है वो 8ों के, ये ज्ञानावरण जो अभी हमने पढ़ा ना, उसी को यहाँ टेबल फॉर्म में दिया है. तो ये पहला हाफ जो है, दो कॉलम है उसमें, क्रम संख्या संयोग पुनरुक्त या अपुनरुक्त, यहां तक ही पढ़ना. आगे वाला कॉलम बाद में पढ़ेंगे हम. जो 1, 2, 3, 4 नंबर दिए, पहले 8 है, ज्ञानावरण से शुरू किए है, तो ये तो 8 अपुनरुक्त है. दर्शनावरण में वो उसका स्वसंयोगी तो अपुनरुक्त है, परंतु 10 नंबर का दर्शनावरण और ज्ञानावरण है वो पहले आ चुका है, इसलिए उसको पुनरुक्त में लिया. और बाकी जो है वो उसके अपुनरुक्त है. आगे के कॉलम में देखना, 16 तक इसके है ना दर्शनावरण के. तो दर्शनावरण में 1 पुनरुक्त हुआ, उसके आगे वेदनीय है, वेदनीय में 2 पुनरुक्त हुए, वेदनीय ज्ञानावरण और वेदनीय दर्शनावरण, और बाकी अपुनरुक्त हो गए. यानी 1 पुनरुक्त हुआ दर्शनावरण में, 2 पुनरुक्त हुए वेदनीय में. अभी मोहनीय में लेना, मोहनीय के पहले जो आ चुके हैं, मोहनीय के पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय आ चुके हैं, उनके भंग वो पुनरुक्त कहलाएंगे, क्योंकि उनके साथ उसको ले लिया है हमने. तो यहाँ 3 पुनरुक्त हुए, आयु में 4 पुनरुक्त हुए, नीचे देखना उसके. फिर नाम में 5 पुनरुक्त हुए, गोत्र में 6 पुनरुक्त हुए, और अंतराय में 7 पुनरुक्त हुए. अपना अंतराय का अंतराय के साथ वो रखना ना अपना. तो इसलिए 7 का संकलन धन क्यों निकाला? पुनरुक्त भंगों में भी 1+2+3+4+5+6+7 किए, तो टोटल 64 में से उसको निकाल दिया तो भी 36 रहते हैं. अभी आ गया. जो सो बंध फासो नामा. अब बंध स्पर्श का अधिकार है. क्या क्या क्या? हाँ, आपका प्रश्न है ये पुनरुक्त अपुनरुक्त में. आप पहले पेज 29 निकालना. पुनरुक्त जो अभी दर्शनावरण का पुनरुक्त जो 10 नंबर पर लिया है, वो पुनरुक्त किसके साथ पुनरुक्त समान है? तो जो 2 नंबर का जो है ज्ञानावरण दर्शनावरण, वही 10 नंबर पर आया है, इसलिए वो 2 से लिखा. आगे भी ऐसा ही. ये किसके साथ उसकी समानता है उसकी बात है. जो सो बंध फासो नामा. अब बंध स्पर्श का अधिकार है, उसका अर्थ कहते हैं. सो पंचवी हो ओरालिय शरीर बंध फासो एवं वेउविय आहार तेया कम्मय शरीर बंध फासो सो सवो बंध फासो नामा. वह 5 प्रकार का है. औदारिक शरीर बंध स्पर्श, इसी प्रकार वैक्रिक आहारक तेजस और कार्बान शरीर बंध स्पर्श, वह सब बंध स्पर्श है. अभी ये शरीर 5 शरीर लिए यहाँ पर, कार्बान का भी शरीर लिया है. जो बांधता है वह बंध कहलाता है. औदारिक शरीर ही बंद, औदारिक शरीर बंद है, ये समास कैसे तैयार हुआ उसकी यहां बात है। उसका उस बंध का स्पर्श औदारिक शरीर बंध स्पर्श है। इसी प्रकार सब शरीर बंध स्पर्शों का भी कथन करना चाहिए। जो एक डेफिनेशन है वही डेफिनेशन प्रत्येक शरीर बंध स्पर्श के लगाना है। शंका, कर्म स्पर्श और नो कर्म स्पर्श द्रव्य स्पर्श में अंतर्भाव को प्राप्त होते हैं, फिर इनका अलग से कथन क्यों किया गया है? क्योंकि नो कर्म के साथ ये नौकर्म में ये सब आ गए ना, और कारमान शरीर है वो कर्म में आ गया, तो इसका अलग से क्यों कथन करते हैं? समाधान, कर्मों का कर्मों के साथ, नौकर्मों का नौकर्मों के साथ और नौकर्मों का कर्मों के साथ स्पर्श होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए इनका अलग से कथन किया है। शंका, कर्म स्पर्श बंध स्पर्श में अंतर्भाव को प्राप्त होता है, फिर उसका पृथक से कथन क्यों किया है? अब इसमें अंतर्भाव होता है तो पहले वाले जो आठ स्पर्श कहे तो कर्म के वो क्यों कहे? समाधान, कर्म बंध स्पर्श नो कर्म बंध स्पर्श का कारण है, यह जतलाने के लिए उसका अलग से कथन किया है। अब यहां बंध स्पर्श के भंग बतलाते हैं। यथा औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेश, तिर्यंच और मनुष्यों में औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। तिर्यंचों में जो औदारिक शरीर के प्रदेश है, परमाणु है, उसके साथ नए औदारिक शरीर के परमाणु आकर बंध को स्पर्श को प्राप्त होते हैं, उसको औदारिक का औदारिक के साथ कहा। औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में वैक्रियक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। औदारिक का वैक्रियक के साथ किसमें? मनुष्य और तिर्यंचों में। देखिए ये वैक्रियक शरीर बनाते हैं ना, वैक्रियक शरीर बनाते हैं ना, कि कौन कौन बना सकते हैं वैक्रियक शरीर? मनुष्य और तिर्यंच में हो सकते हैं। एक तो वैक्रियक वृद्धि वाले जीव भी हो सकते हैं, और दूसरे ये वायुकायकों की विक्रिया होती है, अग्निकायकों की होती है, भोगभूमि वाले तिर्यंच मनुष्यों की होती है, ये विक्रिया पाई जाती है, चक्रवर्ती के पाई जाती है। तो ये जो है वैक्रियक औदारिक के साथ वैक्रियक का संबंध आया, उसका बंध हुआ, स्पर्श हुआ। तीसरी बात, औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेश प्रमत्त संयत गुणस्थान में आहारक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। औदारिक और आहारक का स्पर्श, औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में तेजस शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। हम तो देखें औदारिक तेजस और कारमान तो हमेशा तो रहते हैं मनुष्य तिर्यंचों में, फिर औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में कारमान शरीर के प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। इस प्रकार औदारिक शरीर के पांच भंग होते हैं। अब वैक्रियक शरीर नौकर्म प्रदेश देव और नारकियों में वैक्रियक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। वैक्रियक शरीर नौकर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। ये जो अभी हमने औदारिक के साथ देखा वही रूल यहां पर। वैक्रियक शरीर नौकर्म प्रदेशों का प्रमत्त संयत स के ऊपर बिंदी लगाना, गुणस्थान में आहारक शरीर नौकर्म प्रदेशों के साथ क्या लिखा है? स्पर्श नहीं है लिखा है, है नहीं लिखा, नहीं है, ऐसा क्यों लिखेंगे? देखो वृद्धि नहीं होता ऐसा मत कहो, हाँ एक समय जब आहारक शरीर बनाया है उस समय में विक्रिया नहीं करेंगे, वृद्धि भले पड़े हैं अंदर, एट अ टाइम दोनों का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। नहीं, परमाणु तो लोकाकाश में पड़े हैं, ऐसे वो कुछ उनके साथ पड़े नहीं, कर्म है, वैक्रिक शरीर और वैक्रिक अंगोपांग नाम का कर्म पड़ा है, तो उसका उदय हो तभी उस जाति के परमाणु का संयोग होगा ना वहां पर, परमाणु तो पड़े पूरे लोकाकाश में, तो जब विक्रिया करें, परंतु ये जब आहारक कर रहे हैं तब विक्रिया नहीं करते, जब वैक्रिक हो रहा है तब आहारक नहीं करते, ये बात यहां बताना चाहते हैं। देखो, क्योंकि अनिमा आदि लब्धियों से संपन्न, ये लब्धियों से संपन्न अनिमा आदि जो आठ है ना, हाँ, अनिमा लघिमा वगैरह महिमा, ये वैक्रिक संबंधी जो विक्रिया कर सकते ऐसी जो रिद्धि है उन जीवों को, ऐसे प्रमत्त संयत जीव के विक्रिया करते समय आहारक शरीर की उत्पत्ति संभव नहीं है। जब विक्रिया कर रहे हैं तब आहारक की नहीं होती, जब आहारक बना रहे तब विक्रिया नहीं करेंगे। वैक्रियक शरीर ये नहीं है वो बता दिया, अब क्या है वो बताएंगे। वैक्रियक शरीर नौ कर्म प्रदेश चारों गतियों में तेजस शरीर नौ कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। वैक्रियक और तेजस का चारों गति क्यों लिया, देव नारकियों में तो सामान्य से होते ही है, पर जो मनुष्य जिन मनुष्य तिर्यंचों में विक्रिया होती है उनके तेजस के साथ इसका बंध होगा, इसलिए चारों गति वाले लिए। वैक्रियक शरीर नौकर्म प्रदेश चारों गतियों में कर्मन शरीर प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, वो द्वारा करना, द्वारा हुआ है ब जैसे दिखता है इस प्रकार। वैक्रियक शरीर के चार भंग होते हैं, फिर इन्हें पूर्वोक्त तो पांच भंगों में मिला देने पर नौ भंग होते हैं। आहारक ये औदारिक में कौन सा एक ज्यादा था, मैंने तो पहले ही बता दिया औदारिक का आहारक के साथ, वो यहाँ नहीं है, वैक्रिक का आहारक के साथ नहीं, इसलिए यहाँ चार ही भंग हुए। अब आहारक के बता रहे हैं, आहारक शरीर नौ कर्म प्रदेश प्रमत्त संयत गुण स्थान में, आहारक शरीर नौ कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं उस गुणस्थान में, और जब वो बना रहे तभी होगा, रिद्धि पड़ी है अंदर कर्म बांधे है तो वहां उस जाति के परमाणु उसने ग्रहण किया ऐसा नहीं कहलाएंगे हम। दूसरे, आहारक शरीर नौ कर्म प्रदेश प्रमत्त संयत गुणस्थान में औदारिक शरीर नौ कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, आहारक का औदारिक के साथ भी वहां स्पर्श है। आहारक शरीर और वैक्रियक शरीर का परस्पर में स्पर्श नहीं होता, ये पहले जो बात है वहां फिर दोबारा बताते हैं, क्योंकि आहारक शरीर के उत्थान काल में विक्रिया नहीं होती। अब आहारक शरीर नौ कर्म प्रदेश प्रमत्त संयत गुण स्थान में तेजस शरीर नौ कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, क्योंकि फिर भी उसके लिए एक कंडीशन लगाई, अनिसरणात्मक तेजस शरीर के नौ कर्म प्रदेशों का जीव के सदाकाल सत्व पाया जाता है। इसका अर्थ क्या है, देखो हर एक जीव को, अभी चौदवे वाले को तेजस कारमान शरीर सबको है ना, चौदवे वाले को भी है, सभी संसारी जीवों को, उसका उदय नहीं है, नया ग्रहण नहीं है, परंतु चौदवे में जो पहले से बना है वो पड़ा है वहां पर, तो क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द डाला, कौन सा, अनिसरणात्मक। ये क्या होता है, नहीं नहीं उसको नहीं कहते, जब तक विच्छित्ति नहीं होते प्रवाह रूप से रहता है उसको निस्सरण से, निस्सरण यानी निकलना, जिसको हम तेजस समुद्घात कहते हैं, बिना समुद्घात हुए तेजस शरीर सबके शरीरों सबके साथ पड़े हैं, इसकी बात चल रही है। अब जैसे आहारक के लिए ये कंडीशन क्यों डाली, अनिसरणात्मक होने चाहिए, आहारक जब चल रहा है तब वो तेजस की समुद्घात नहीं करेंगे, आहारक समुद्घात कर रहे हैं ना, तो आहारक के काल में ही तेजस का समुद्घात नहीं करेंगे। इसलिए अनिस्सरणात्मक कहा, जहाँ है वहीं पर है स्थित, हमेशा जो है तेजस समुद्घात होता है तो उसके प्रदेश बाहर फैलेंगे जीव के, औदारिक तो वहीं पड़ा रहेगा और वो बाहर जो प्रदेश है उसमें तेजस कारमान चले जाएंगे, वो बात यहां पर नहीं लेना। इसलिए अनिस्सरणात्मक तेजस लिया, तो सदाकाल सत्व पाया जाता है, तो सभी जीवों का, सभी संसारी जीवों का हमेशा ही उसका सत्व पाया जाता है। फिर आगे ऐसा नहीं, तेजस समुद्घात नहीं होना, समुद्घात नहीं होना उसको कहते अनिस्सरणात्मक, और समुद्घात होगा तो हम कहेंगे वो निस्सरण हुआ उसका। आहारक शरीर नौकर्म प्रदेश प्रमत्त संयत जीवों में कार्मण शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, क्योंकि आठों कर्मों की प्रमत्त संयत जीवों के सदाकाल सत्ता पाई जाती है। अन्य की तो है ही है, यहाँ प्रमत्त संयत की बात हो रही है, इसलिए उनके साथ भी वो आहारक के शरीर स्पर्शित है। इस प्रकार आहारक शरीर के चार भंग होते हैं, इसमें भी आहारक और वैक्रेयक का नहीं लिया, बाकी चार लिए, इन्हें पहले के नौ भंगों में मिलाने पर 13 भंग होते हैं। अब तेजस शरीर की बात करेंगे, तेजस शरीर करना शरीर हुआ, इसी लाइन में दो बार है वो शरीर। देखो तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश चारों गतियों में तेजस शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। तेजस तो शरीर सभी जीवों को है, तो तेजस का तेजस के साथ, तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, यानी तेजस का और औदारिक का। तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश देव और नारकियों में वैक्रियक शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश प्रमत्त संयत जीवों में आहारक शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, और तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश चारों गतियों में कार्मण शरीर कर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। इस प्रकार तेजस शरीर के पांच भंग होते हैं, औदारिक के और तेजस के पांच देखे, वैक्रिय के चार देखे, आहारक के चार देखे, इन्हें पहले के 13 भंगों में मिलाने पर 18 भंग होते हैं। चार नंबर पर आहारक वाले को भी तेजस है ना, हाँ, तभी तो पांच घटित हो गए, नहीं तो चार ही हो जाते हैं। अब कार्मण शरीर की बात करेंगे, कार्मण शरीर कर्म प्रदेश चारों गतियों में कार्मण शरीर करना करीर हुआ है, क्या कहते हैं, कार्मण शरीर कर्म प्रदेश चारों गतियों में कार्मण शरीर कर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। कार्मण शरीर कर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। कार्मण शरीर कर्म प्रदेश देव और नारकियों में वैक्रियक शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। कार्मण शरीर कर्म प्रदेश प्रमत्त संयत, सके ऊपर बिंदी लगाना, प्रमत्त संयत गुणस्थान में आहारक शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। कार्मण शरीर कर्म प्रदेश चारों गतियों में तेजस शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। इस प्रकार कार्मण शरीर के पांच भंग होते हैं, इन्हें पहले के 18 भंगों में मिलाने पर 23 भंग होते हैं। तेज सभी हो गए ना, तेजस का आहारक छोड़कर बाकी सभी हो गए वहां पर। जिस समय तेजस समुद्रात कर रहे हैं मुनिराज, मुनिराज की बात करें कि अन्य की, हाँ तो जब तेजस का तेजस के साथ है ही है, तेजस का औदारिक का भी है कि छूट गया उसका, कैसे है? हाँ तो अंदर भी है और बाहर भी है। हाँ तेजस का कारमण के साथ है कि नहीं है? हाँ तो नॉर्मल की भी बात है, और उनका प्रश्न है वही विक्रिया यानी तेजस समुद्घात करते समय क्या है। तो उसके साथ वो बंध तो कहाँ छूटा उसका, तेजस का तेजस के साथ है, तेजस का कारमण के साथ है, तेजस का औदारिक के साथ है। हाँ अभी आगे ये 23 जो है उसमें अपुनरुक्त भंग 14 होते हैं, अवशेष 9 भंग पुनरुक्त होते हैं। जैसे हमने औदारिक का वैकिरेक, वैकिरेक का औदारिक देखा, औदारिक का तेजस के साथ, तेजस का औदारिक, इस तरह से जो है। इस प्रकार कर्म और नोकर्म संधिकर्ष का कथन किया, यही है ना कि बीच में छूट गया नहीं। कर्म संधिकर्ष का कथन तो पहले ही कराए हैं, इसलिए पुनरुक्त दोष के भय से उसका यहाँ पुनः कथन नहीं किया। इस प्रकार बंध स्पर्श का कथन समाप्त हुआ। जो सो भव्य फासो नामा, अब भव्य स्पर्श का अधिकार है। भव्य का अर्थ होता है भावी, भव्य ने भव्य अभव्य वाला भव्य नहीं है। हाँ वहां तो जब जब भव्य कहना है ना, भव्य अभव्य वाला, वहां भव्य सिद्धिक और अभव्य सिद्धिक कहते हैं, यहां भव्य ने भावी उसका अर्थ कहते हैं। जहां विष कूड़ जंत पंजर कंदय वग्गुरादिनी कत्तारो समोदी समोदी दारो य भवियो फुसनदाये नो य पुनतावतम फुसदी सो सवो भव्य फासो नाम। यथा विष कूट यंत्र पिंजरा कंदक और पशु को फंसाने का जाल आदि, तथा इनके करने वाले और इन्हें इच्छित स्थान में रखने वाले स्पर्शन के योग्य होंगे, परंतु अभी उन्हें स्पर्श नहीं करते, वह सब भव्य स्पर्श है। क्या कहना चाहते हैं? ये अलग अलग प्राणियों को पकड़ने के लिए जो कोई पिंजरे यंत्र कूट वगैरह बनाते हैं, वो जिसने बनाए हैं वह जीव या वो जो चीज रखी है, तो उसमें वो प्राणी आके पकड़ा जाएगा, तो उसका स्पर्श भविष्य में होगा, इसलिए उसको भव्य स्पर्श कहते हैं। इसको पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। ये जो नाम आए हैं उसका अर्थ पहले दिखाते हैं। विष सुप्रसिद्ध है, कौवा और चूहा आदि के धरने के लिए जो बनाया जाता है उसे कूट कहते हैं। ये मूसा आया था ना, ये समय ज्ञान चंद्रिका में भी ये सब बातें हैं। ये जो अभी जो बताया तो वहां ऐसा लिखा है मिथ्या ज्ञान किसको कहना, तो ये सब बातें बताए हैं। और वहां कहा है कि जो ऐसे ऐसे, हाँ इसमें बिना पढ़ाए बिना उपदेश के जिसकी बुद्धि चलती है कैसे प्राणियों को पकड़ना, तो उसको वह मिथ्या ज्ञान कहा है। और उपदेश के द्वारा तो वो तो उसको फिर जैसे हम गुरित कहते हैं ना वैसे वो श्रुत मेले। मैंने कहा कि बिना सिखाए चूहे को कैसे पकड़ना, ये पिंजरे कैसे तैयार करना, ये कोई बुद्धि के द्वारा बनाए ना उसने, वो मिथ्या ज्ञान में लिया है उसके। देखो विष सुप्रसिद्ध है, इसमें बोलो
झाड़ पे चढ़ते ना ऐसे खिसकोली, गुजराती में खिसकोली बोलते हैं,
हिंदी में क्या?
तो हमारे घर के सामने वो झाड़ था, तो वो खिसकोली को पकड़ने का बहुत इच्छा होती थी।
हाँ।
तो उसको क्या करे, एक ऐसा पहले आम की टोकरी आती थी, अभी तो डब्बा आता है खोके का, वो टोकरी आती थी, तो उसको ऐसे काठी लगा के रखने का, अंदर सिंगदाना डाल देने का, और वो दोरी को बांध के ऐसा लंबा जाके खड़ा रहने का, वो जैसे अंदर घुस गई लकड़ी खींच ले तो पकड़ी जाती थी। ये सारा ऐसा मिथ्या ज्ञान है ये बता रहे कूट।
ये उसका उपजत होता है ना, यानी बिना किसी सिखाए जो होता है ऐसे ही उसकी बात चल रही है, वो विषय वहाँ
वो आत्मज्ञान है क्या पहले ये देखो। उसको पकड़ने का छोड़ के प्राणियों को पकड़ते,
ये मिथ्या बुद्धि कहाँ कहाँ चलती है उसकी ऐसी बात। कौवा और चूहा आदि के धरने के लिए जो बनाया जाता है उसे कूट कहते हैं। जो सिंह और व्याघ्र आदि के धरने के लिए बनाया जाता है और जिसके भीतर बकरा रखा जाता है उसे यंत्र कहते हैं। ऊपर देखो ये वहाँ छल्ला छली क्या बात है छलिया छैला छैला हिंदी में वहाँ वो छैला लिखा था उन्होंने, हमको उसका अर्थ समझ में नहीं आता था। ये यहाँ भी लिखा है ऊपर देखो सिंह बग धरणठ मोदिद अभत्तर कय छालियम जंतम नाम, छालिया लिखा ना ये छालिया ने वो बकरा रखते छैला उसको यंत्र कहते हैं। हम सबको पिंजरा ही लिखते हैं, यहाँ तो अलग अलग नाम लिखे उन्होंने। तीतर और लाव आदि के पकड़ने के लिए ये जो पंछी होते हैं जो अनेक छोटी छोटी पंछे लेकर बनाया जाता है उसे पिंजरा कहते हैं। हाथी के पकड़ने के लिए जो वारीबंद बनाया जाता है उसे कंदक कहते हैं। वारीबंद यानी वो बड़े बड़े रस्से होते हैं उसमें गांठे लगाकर ऐसे कुछ बिछाया जाता है ऊपर, और फिर वो तो उसके वजन से वो नीचे गिर जाता है तो उसको कंदक यानी पहले खड्डा गड्ढा करेंगे और उसके ऊपर वो हाँ बिछा देंगे। अथवा हरिण और सुअर आदि के मारने के लिए जो फंदा तैयार किया जाता है उसे कंदक कहते हैं। दोनों ही फंदा यानी रस्सी का जो हम फांस फांस कहते हैं ना, इसे आपने देखा होगा शायद, वो तो इसे दूर से फेंकते उसको गले में अटक जाता है और फिर उसको पकड़ते हैं, या वो एक सिंगे क्या कहते वो रेनोसरस गेंडा मैंने उसकी एक फिल्म देखी थी उसको कैसे पकड़ते हैं, उसको आगे वाला वो होता है ना नाक पर सिंग तो उसमें वो रस्सी ऐसे फेंकते हैं और फिर उसको पकड़ लेते हैं। वग्गुरा प्रसिद्ध ही है, यहाँ वग्गुरा किसको कहा है पता नहीं है, यानी ये पशुओं को फंसाने का जाल ऊपर कहा था ना अलग अलग जाल जो है इच्छित वस्तु के स्पर्शन अर्थात पकड़ने के लिए इत्यादि द्रव्यों का रखना भव्य स्पर्श कहलाता है। ये चीजें रखना इसको भव्य स्पर्श कहेंगे। तथा इन यंत्रादि के करने वाले और ओद्दीदारों अर्थात इन यंत्रादि को इच्छित स्थान पर रखने वाले भी भव्य स्पर्श कहलाते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया गया, वो रखने वाले कारण है ना और वो वहाँ जो पकड़े जाएंगे वो कार्य होगा तो इसलिए कारण को भी यहाँ स्पर्श कहा। यंत्रादि को स्पर्श संज्ञा किस निमित्त से प्राप्त होती है ऐसा पूछने पर कारण का कथन करने के लिए कहा है कि भवियो फुसणदाये नोय पुण तावतम फुसदी, अर्थात जो स्पर्शन के योग्य तो है परंतु इस इच्छित वस्तु को स्पर्श नहीं करता उसकी भव्य स्पर्श संज्ञा है। यहाँ वह तो उसमें पकड़े जाएंगे, जब तक नहीं पकड़े गए हैं तब क्या कहेंगे भव्य ने भावी, यानी स्पर्शन के योग्य तो है परंतु अभी स्पर्शन नहीं हुआ है तो उसको हम भव्य स्पर्श कहेंगे। इस प्रकार भव्य स्पर्श का कथन समाप्त हुआ। इसी का विशेषार्थ बताते हैं। जो पर्याय भविष्य में होने वाली होती है उसे भव्य या भावी कहते हैं। यहाँ स्पर्श का प्रकरण है इसलिए भव्य स्पर्श का यह अर्थ होता है जो भविष्य में स्पर्श पर्याय से युक्त होगा वह भव्य स्पर्श है। इसके उदाहरण स्वरूप सूत्र में विषव यंत्रादिक पदार्थ लिए गए हैं। इन पदार्थों का निर्माण मुख्यतया अन्य जीवों को पकड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इनकी भव्य स्पर्श संज्ञा होती है। इसी प्रकार कारण में कार्य का उपचार करके इन विषादिक के निर्माता और इन्हें इच्छित स्थान पर रखने वाले भी भव्य स्पर्श कहलाते हैं। द्रव्य निक्षेप में आगे होने वाली पर्याय और उसके कारण दोनों का ग्रहण होता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए, यानी उसी अपेक्षा से यहाँ भी वो भव्य स्पर्श में उनको ले लिया है। अब यहाँ तो उदाहरण के तौर पर ये चीजें लिखी है, अभी उसमें और भी सब समझ लेना जो कुछ है। जो सो भाव फासो नाम। अब भाव स्पर्श का अधिकार है, इसका अर्थ कहते हैं, वो जुत्तो पाहुड़ जानो सो सवो भाव फासो नाम। ये आपको याद आया होगा, भाव निक्षेप किसको कहते हैं? उस विशिष्ट प्रावृत्त का जानकार, उसी में उपयोग वाला जीव, उसको क्या कहेंगे? आगम भाव कहेंगे। हाँ, और नुआगम भाव भी अलग होता है। हाँ देखो, जो नहीं जानने वाला है उसमें लगाएंगे। तो जो स्पर्श प्रावृत्त का ज्ञाता उसमें उपयुक्त है, पाहुड़ जानो लिखा ना ऊपर, पाहुड़ जानो यानी उस प्रावृत्त को जानने वाला, और वह जुत्ते ने उपयोग उसमें है, उसका उसमें उपयुक्त है, वह सब भाव स्पर्श है। स्पर्श प्रावृत्त को जानकर जो उसमें उपयुक्त है वह सब भाव स्पर्श है, ऐसे यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यह सूत्र देशामर्शक है, इसलिए जो आगम के बिना स्पर्श से के उपयोग से युक्त है और जो जीव पुद्गल आदि द्रव्यों का ज्ञानादि भावों द्वारा स्पर्श होता है वह भाव स्पर्श है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इसी का विशेषार्थ बताते हैं। आगम और नुआगम के भेद से भाव निक्षेप दो प्रकार का होता है। ऊपर लिखा ना आगम के बिना, या आगम जानने वाले वो आगम भाव निक्षेप की, जो नो आगम वाले जो नहीं जानने वाले उसमें कहेंगे अभी। भाव स्पर्श में ये दोनों भेद विवक्षित है। जो स्पर्श प्रावृत्त का ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त है वह पहला भाव स्पर्श है, और जो स्पर्श प्रावृत्त का ज्ञाता नहीं भी है किंतु स्पर्श रूप उपयोग से युक्त है वह दूसरा भाव स्पर्श है, यानी वो नो आगम वाला है। तथा जीव पुद्गलादि द्रव्यों का जो ज्ञान आदि अपने अपने भावों के द्वारा स्पर्श होता है वह भी दूसरा भाव स्पर्श है। ज्ञान के द्वारा जानना वो भी एक भाव स्पर्श कहलाएगा, वो स्पर्श में स्प बराबर करना। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यद्यपि सूत्र में प्रथम प्रकार के भाव स्पर्श का ही ग्रहण किया है, वो लिखा ना स्पर्श प्रावृत्त का ज्ञाता और उसमें उपयुक्त, उसका ही उसमें कथन है, परंतु सूत्र को देशामर्शक मानकर यहाँ भाव स्पर्श के अन्य भेदों का भी विवेचन किया गया है। इस प्रकार भाव स्पर्श का कथन समाप्त हुआ। उस श के ऊपर रफाड़ देना, अस्पष्ट है। अच्छा, एदेसिम फासाणम केन फासेन पयदम कम फासेन पयदम। कहते इतने सब स्पर्श हमने देखे हैं, तो इसमें से कौन सा स्पर्श हमको चाहिए? यहाँ उसकी प्रकृत मैंने यहाँ चर्चा कौन से स्पर्श की चलेगी? तो ये पूछते हैं, इन स्पर्शों में से प्रकृत में कौन स्पर्श लिया गया है? तो कहते हैं प्रकृत में कर्म स्पर्श लिया गया है। तो बाकी क्यों कहा इतना, ये सब शंग कर पूछेगा। अध्यात्म को विषय करने वाले इस खंड ग्रंथ की अपेक्षा कर्म स्पर्श प्रकरण प्राप्त है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो हम अध्यात्म है वो तो कर्म, वो तो ये अपना विषय नहीं, ऐसा कहते, ये अध्यात्म में आता है वो कर्म भी। क्या कहते? महाकर्म प्रकृति प्रावृत में जो द्रव्य स्पर्श सर्व स्पर्श और कर्म स्पर्श इन तीनों का प्रकरण है, उसमें तो जो नहीं तो, यानी महाकर्म प्रकृति प्रावृत में तो तीनों ही लिए हैं, परंतु यहाँ पर कर्म स्पर्श को लिया है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? उसका समाधान, दिगंतर शुद्धि में द्रव्य स्पर्श का कथन किए बिना वह स्पर्श अनुयोग का महत्व नहीं बन सकता। इससे मालूम पड़ता है कि वहाँ द्रव्य स्पर्श सर्व स्पर्श और कर्म स्पर्श इन तीनों से प्रयोजन है। दिगंतर शुद्धि यानी दिक यानी दिशा, दिशाओं की शुद्धि वगैरह, जो कोई शुद्धि का प्रकरण है वहाँ, तो उसमें द्रव्य स्पर्श, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ स्पर्श, उसको वहाँ वो बात है, परंतु यहाँ कर्म स्पर्श की ही बात है। फिर शंका, यदि प्रकृत में कर्म स्पर्श से प्रयोजन है तो भूतबली भगवान ने शेष 15 वो प बराबर करना, शेष 15 अनियोग द्वारों का अवलंबन लेकर उसका यहाँ कथन क्यों नहीं किया? यानी उसमें वो 16 अनुयोग क्यों नहीं बताए? एक तो यहाँ बता ही दिया ना निक्षेप वाला, तो उस पर भी 16 क्यों नहीं घटित किए? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्पर्श संज्ञा वाले कर्म स्कंद का शेष अनुयोग द्वारों के प्रतिपादन करने वाले वेदना अधिकार में कथन किया है करना बराबर, उसके सिवाय और कोई विशेष नहीं है ऐसा समझकर यहाँ उसका कथन नहीं किया है। ये वेदना अनुयोग द्वार क्या है? हाँ, 10वीं 11वीं 12वीं पुस्तक वो सारे वेदना के 16 हमने देखे हैं अनुयोग द्वार, तो वेदना में कर्म की ही बात आई है, तो यहाँ एक कर्म स्पर्श पर और अलग 16 अनुयोग द्वार 15 अनुयोग द्वार नहीं बताए, ये बात बताना चाहते हैं। विशेषार्थ नहीं, ऊपर अभी शंका, यदि ऐसा है तो सर्वस्पर्श और द्रव्य स्पर्श तो अपुनरुक्त थे, उनका यहाँ कथन क्यों नहीं किया? वेदना तो पुनरुक्त थी, परंतु जो नहीं बताए थे उसको तो बताना था। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ अध्यात्म विद्या का प्रकरण है, इसलिए अनेक नयों की विषयभूत अनध्यात्म विद्या का प्रकृत में कथन करना नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्य स्पर्श सर्वस्पर्श में बहुत सारी अन्य अन्य चीज़ें होगी, यहाँ तो हमारे जीव द्रव्य से जो कुछ लेना देना है उसके साथ जो निमित्त बनता है उसकी बात है। विशेषात, यहाँ स्पर्श निक्षेप 13 प्रकार का कहा है, उनमें से प्रकृत में कर्म स्पर्श लिया गया है, यानी अपने यहाँ का विषय कर्म स्पर्श। प्रश्न यह है कि यदि प्रकृत में कर्म स्पर्श लिया गया है तो इसका नाम कर्म के सिवा शेष, नाम कर्म कौन सी बात है? ये नाम कर्म किसको कहना? बुक नहीं है, पेजेस नहीं है, अच्छा, नाम निक्षेप वाला नाम कर्म, ये अंतराय गोत्र नाम की बात नहीं है। जैसे अभी हमने देखा था ना, नाम स्पर्श द्रव्य स्पर्श स्थापना स्पर्श, वैसे कर्म पर वो घटित करना, तो उसको नाम कर्म कहा। तो इसका नाम कर्म के सिवा शेष अन्य जो अनुयोग द्वार है, कौन से? कर्म नय विभाषणता, कर्म नाम विधान आदि 15 अनुयोग द्वारों के द्वारा अवश्य कथन करना था, ऐसा प्रश्न था। समाधान यह है कि पहले वेदना अनुयोग द्वार में वेदना शब्द से कर्म का ही ग्रहण किया है, इस तरह से वो अनुयोग द्वार अपना समाप्त होता है। कौन सा अनुयोग द्वार समाप्त हुआ? निक्षेप वाला, हमने देखा निक्षेप, फिर नए विभाषणता वगैरह वगैरह बात है। स्पर्श अनुयोग द्वार ही बताए उन्होंने, સ્પર્શન યોગ દ્વારા ઠવણ ફાસ ફાસાનું ઓગતદાર અભી કમ્માનું ઓગતદાર ચલતા હૈ યહાં ભાગ એક દો એસે ને કર્મ સ્પર્શ કર્મ હા ઓર પ્રકૃતિ એ તીન બાત હૈ ઉસમે સે સ્પર્શ હો ગયા હા देखो ये जो है ना इसमें इस पूरे पुस्तक में क्या है स्पर्श कर्म और प्रकृति अनुयोग द्वार है भाग एक दो और तीन इसमें है ना वर्गणा के ये अनुयोग है वर्गणा में ये स्पर्श नाम का ये हो गया अनुयोग द्वार अब वर्गणा में ये जो कर्म अनुयोग द्वार है उसकी चर्चा अब चलेगी आप कुछ कह रहे थे अरविंद भाई कौन सा एवं फास अच्छा उसका ट्रांसलेशन नहीं किया ऐसा कहते हैं एवं फास निखेवे समत्ते फासेति समत्तम अनुयोगदारम इस तरह से स्पर्श निक्षेप में स्पर्श निक्षेप समाप्त होने पर वो स्पर्श नाम का अनुयोग द्वार समाप्त होता है ऐसा कहते हैं निक्षेप को ही यहाँ इतने विस्तार से बताया है और उसमें ही अनुयोग द्वार समाप्त कर लिया उसका ट्रांसलेशन नीचे नहीं है अनुवाद हिंदी में वो बात बता रहे थे अरविंद भाई अब यहाँ नया अधिकार शुरू करते हैं मुनि सोवय जिन वसहम सोवय मुनि वसह संतु अम्नमियुं कम्माणुयोयमिणमो बोच्छमणि यत्तगन्थगयम् इसका अर्थ नीचे है वो पहले पढ़ेंगे फिर हम बीच वाला स्पष्टीकरण पढ़ेंगे नीचे एक लिखा है ना हाँ नीचे से छठी लाइन अभी जो हमने मंगलाचरण कहा उसकी अर्थ कहते हैं उत्तम व्रतधारी श्रेष्ठ मुनियों ने देखो मुनि सुव्रत इस शब्द नंबर श्लेष जिसको कहते हैं ना एक ही शब्द के दो अर्थ मुनि सुव्रत और मुनि सुव्रत दो है एक तो भगवान मुनि सुव्रत है और मुनि कैसे व्रतधारी मुनि तो कहते और वो भी कैसे व्रत उत्तम व्रतधारी सुव्रत उत्तम व्रतधारी श्रेष्ठ मुनियों ने उस यानी वो पूरा ही पैराग्राफ नहीं लिया ऐसा कहते अच्छा अच्छा हाँ 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 बराबर 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 हाँ देखो ये हम बाद में अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा ना हाँ तो ये जो 36 पृष्ठ पर पूरा पैराग्राफ है 33 नंबर के सूत्र के नीचे वाला ऊपर तो उसका ट्रांसलेशन इधर आया है यानी कर्मानुयोग द्वारा ये पैराग्राफ के बाद उसका वहाँ लिखना चाहिए था वो पहले आ गया है देखो अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा है तो पहले मंगलाचरण का अर्थ करके फिर वो रहा है वो पैराग्राफ पढ़ेंगे एक्चुअली कल मैंने वो पढ़ा था जाना भी था ये यहाँ का आया है फिर अभी घोटाला हो गया देखो उत्तम व्रतधारी श्रेष्ठ मुनियों ने जिनकी स्तुति की है ऐसे मुनिसुरत नामक जिनेन्द्र देव को नमस्कार करके जिसके विविध अर्थ हैं और जिसका विशद विवेचन अनेक ग्रंथों में किया गया है ऐसे इस कर्म अनुयोग द्वार का मैं यानी वीरसेन स्वामी व्याख्यान करता हूँ ये मंगलाचरण हुआ अब इसके पहले ये जो पूर्व अधिकार का जो एक पैराग्राफ का अर्थ रह गया था वो यहाँ आता है देखो इसलिए वहाँ इसका विवेचन हो चुका है अतः पुनः इसका विवेचन करना उचित न जानकर यहाँ उसका कथन नहीं किया है। कहाँ? वेदना अधिकार में, वेदना खंड में इसका विवेचन हो चुका है। प्रसंग में एक प्रश्न यह भी किया गया है, जब इस अधिकार में स्पर्श की मुख्यता है तो सर्वस्पर्श और द्रव्य स्पर्श जो अपुनरुक्त है और जिनका अन्यत्र कथन नहीं किया गया है उनका यहाँ अवश्य कथन करना था। इसका समाधान करते हुए, ये सब विशेषार्थ ही चल रहा है, वीरसेन स्वामी ने जो कुछ भी कहा है वह मार्मिक है। उनका कहना यह है, यह अध्यात्म शास्त्र है इसलिए इसमें अन्य विषयों के कथन को विशेष अवकाश नहीं है। क्या कहा है धवला को? अध्यात्म शास्त्र कहा है। और हम तो ये अध्यात्म के जो पुजारी है ना, तो ये करना नहीं हो, करना नहीं हो कहकर इसको निषेध कहते हैं। ये तो स्पष्ट शब्दों में लिखा है और ये मूल उनकी बात है। हाँ, वीरसेन आचार्य लिख, देखो ये अजप विज्ञाय का, ये अध्यात्म शास्त्र है का उन्होंने। पढ़ती हूँ अभी आगे में। देखो, यह अध्यात्म शास्त्र है इसलिए इसमें अन्य विषय को, विषयों के कथन को विशेष अवकाश नहीं है। अध्यात्म शास्त्र का अर्थ है आत्मा की विविध अवस्थाओं और उनके मुख्य निमित्तों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र। ये हम तो अवस्था बिना का और निमित्त बिना का ही हमको चाहिए ना, उसी को हमने अध्यात्म मान लिया है। क्योंकि आत्मा को जानना है तो सर्वांग जानना, हाँ विशेषार्थ में आया है, परंतु वहाँ उन्होंने लिखा है न पयदाय अजप विज्ञाय अपयद अनजप विज्ञाय बहुनय गहण निलियाणाय परुवणानुवत्ति दो। यानी यहाँ अध्यात्म विद्या है, वहाँ अनात्म विद्या को यहाँ ज्यादा नहीं लिया। अध्यात्म विद्या उन्होंने भी कहा है उसको लास्ट जो न पयदाय अजप विज्ञाय, अजप विद्या ने अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या में अपयद अनजप विज्ञाय बहुनय गहण, यानी उसमें जो अध्यात्म विद्या का प्रकरण है, ये जो समाधान में उसका ट्रांसलेशन भी किया है देखो, कि यहाँ अध्यात्म विद्या का प्रकरण है इसलिए अनेक नयों की विषयभूत अनध्यात्म विद्या का प्रकृत में कथन करना नहीं बन सकता। अध्यात्म विद्या में लिया उसको, आत्मा की अवस्थाएं और उसमें निमित्त, यह उसका व्यापक अर्थ है। वैसे जीव की विविध अवस्थाओं में मूल वस्तु का ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही अध्यात्म शास्त्र कहलाता है, परंतु कार्य कारण भाव की दृष्टि से विचार करने पर उन विविध अवस्थाओं और उनके मूल निमित्तों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का भी इसमें अंतर्भाव हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर जो बराबर करना 14 मार्गणाओं में से प्रारंभ की 4 मार्गणाओं को द्रव्य मार्गणाएं कहते हैं, वे सिद्धांत ग्रंथों के अभिप्राय और उनकी वर्णन शैली से अनभिज्ञ है, यही कहना पड़ता है। पहली 4 मार्गणा कौन सी है? हाँ, गति, इंद्रिय, काय और योग। सिद्धांत ग्रंथों में भाव मार्गणाओं का ही विवेचन किया गया है, यह बात खुद्दाबंद के 14 मार्गणाओं का विवेचन करने वाले सूत्रों से भी स्पष्ट जानी जाती है। ये भाव मार्गणा कहा उसको, ये सारी द्रव्य मार्गणाओं कहकर कर्णानुयोग है, कर्णानुयोग एक्चुअली कर्णानुयोग तो त्रिलोकसार को कहा है। भूगोल जो है और गणित जो है उसको कर्णानुयोग कहा है, ये तो सारा इसमें आता है, हाँ अध्यात्म शास्त्र में आता है। यही कारण है यहाँ 13 प्रकार के स्पर्शों का स्वरूप कह करके उनका विशेष व्याख्यान नहीं किया है, हैले? क्योंकि जीव का तो निमित्त कर्म के साथ है, इसलिए उसकी मुख्यता बताएंगे। इस प्रकार स्पर्श निक्षेप का कथन समाप्त होने पर स्पर्श अनुयोग द्वार का कथन समाप्त हुआ। ये ट्रांसलेशन तो मैंने बिना पढ़े भी बराबर बताया था, परंतु वो यहाँ लिखा ही है। मंगलाचरण हमने पढ़ा है, बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो।